एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम गोता लगा रहे हैं स्टीवन पिंकर की एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली किताब में।
हाँ, एनलाइटनमेंट नाउ, द केस फॉर रीजन, साइंस, ह्यूमनिज्म एंड प्रोग्रेस।
बिल्कुल। और ये किताब एक ऐसे टाइम पे आई है जब लगता है चारों तरफ जैसे निराशा ही निराशा है ना।
हाँ बिल्कुल, आप न्यूज देखो, सोशल मीडिया देखो या दोस्तों से भी बात करो,
वही सुनने को मिलता है।
हाँ, कि दुनिया तो बस खराब होती जा रही है, समस्याओं बढ़ रही हैं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं।
सही कहा, लगता है जैसे हर दिन कोई ना कोई बुरी खबर ही आनी है। लेकिन ये किताब स्टीवन पिंकर की एनलाइटनमेंट नाउ ये इसी सोच को चैलेंज करती है।
अच्छा, कैसे?
ये आंकड़ों और सबूतों के आधार पर ये तर्क रखती है कि नहीं, असल में पिछले कुछ 100 सालों में मानवता ने जबरदस्त, मतलब जबरदस्त प्रगति की है।
ओके।
और ये सब मुमकिन हुआ है, वो कहती है किताब, प्रबुद्धता यानी एनलाइटनमेंट के विचारों की वजह से।
तो ये एक तरह से निराशा के खिलाफ एक मजबूत तर्क है, मतलब ये सिर्फ कोई उम्मीद नहीं है।
नहीं नहीं ये तथ्यों पर आधारित आशावाद की बात करती है, रैशनल ऑप्टिमिज्म।
ये तो जरूरी लगता है समझना आज के माहौल में कि
बिल्कुल
क्या हम वाकई पीछे जा रहे हैं या कहानी कुछ और ही है।
बिल्कुल। चलिए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्टीवन पिंकर हैं कौन, मतलब उनकी बात में इतना वजन क्यों है कि हम इतनी गहराई से बात कर रहे हैं इस पर।
हाँ, सही पॉइंट है। स्टीवन पिंकर, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के।
अच्छा, साइकोलॉजिस्ट हैं।
हाँ, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और भाषाविद, लिंग्विस्ट भी। उनकी खासियत ये है कि वो मुश्किल वैज्ञानिक आइडियाज को बहुत साफ और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं आम लोगों के लिए।
और खास तौर पे इस टॉपिक पर, मतलब मानव प्रगति पर लिखने के लिए वो इतने फिट क्यों माने जाते हैं? क्या ये सिर्फ हिस्ट्री का एनालिसिस है?
नहीं, यही तो बात इंटरेस्टिंग है। पिंकर सिर्फ इतिहासकार नहीं है, उनकी एक पिछली किताब थी द बेटर एंजल्स ऑफ आर नेचर।
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में, हिंसा कम होने पर थी शायद।
हाँ बिल्कुल, उसमें उन्होंने आंकड़ों से दिखाया था कि लंबे समय में दुनिया में वायलेंस कम हुई है, जो अपने आप में काफी चौंकाने वाला था। वो किताब कहीं ना कहीं इसकी नींव रखती है।
अच्छा, तो वो पहले भी इस तरह के डेटा ड्रिवन तर्क दे चुके हैं?
दे चुके हैं। और दूसरी शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइकोलॉजी में उनकी जो एक्सपर्टीज है वो उन्हें ये समझने में मदद करती है कि हम इंसान सोचते कैसे हैं।
अच्छा, किस तरह के पूर्वाग्रहों की बात कर रहे हैं?
वो बताते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ बायस होते हैं, जैसे नेगेटिविटी बायस, मतलब हम बुरी खबरों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं।
हाँ, ये तो होता है।
और एक अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, मतलब जो खबरें या घटनाएं आसानी से याद आ जाती हैं, जैसे कोई ताज़ा दुर्घटना या हिंसा, हम उन्हें ज्यादा आम मान लेते हैं जितना वो असल में होती नहीं है।
तो पिंकर ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे सोचने के तरीके हैं ये हमें दुनिया को असलियत से ज्यादा खराब दिखाते हैं।
बिल्कुल। तो उनका नजरिया सिर्फ आंकड़ों का ढेर नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान की समझ के साथ जुड़ा हुआ है। ये उन्हें एक यूनिक एंगल देता है ये समझाने के लिए कि प्रगति हुई तो है, पर हम इतने निराशावादी क्यों महसूस करते हैं।
ये तो काफी दिलचस्प पॉइंट है। चलिए अब सीधे किताब के दिल पर आते हैं। इसका कोर आइडिया क्या है? पिंकर क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली?
किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि 18वीं सदी में यूरोप में जो प्रबुद्धता, मतलब एनलाइटनमेंट का दौर आया, उसके तीन मुख्य स्तंभ थे, तर्क यानी रीजन, विज्ञान यानी साइंस, और मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म।
ठीक है।
पिंकर कहते हैं कि इन्हीं तीन आइडियाज को अपनाने की वजह से पिछले लगभग 250 सालों में इंसानी जिंदगी लगभग हर पैमाने पर बेहतर हुई है।
हर पैमाने पर? जैसे
ज्यादा लंबी, ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा प्रॉस्परस, ज्यादा शांतिपूर्ण और शायद ज्यादा खुशहाल भी।
तो वो असल में इन एनलाइटनमेंट आइडियाज को डिफेंड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यही हमारी तरक्की का राज है।
हाँ, और वो इसे साबित करने के लिए आंकड़ों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, जैसा आपने कहा, वो जिसे प्रगति भय या प्रोग्रेसोफोबिया कहते हैं,
मतलब तरक्की को मानने से हिचकना।
हाँ, उसे वो चैलेंज करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवन प्रत्याशा, डबल से भी ज्यादा हो गई, भयानक गरीबी बहुत कम हुई, एजुकेशन बढ़ी, डेमोक्रेसी बढ़ी, लिस्ट लंबी है।
लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये बताना तो नहीं होगा कि सब चंगा सी, क्योंकि समस्याएं तो आज भी बहुत है ना?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पिंकर समस्याओं को नकारते नहीं हैं। उनका पॉइंट ये है कि अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, अगर हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को ही, मतलब तर्क, विज्ञान, मानवतावाद, उन्हीं पर शक करने लगेंगे या उन्हें छोड़ देंगे।
15 एरियाज,
हाँ।
और तीसरे हिस्से में वो इन एनलाइटनमेंट विचारों पर जो हमले होते हैं या जो आलोचना होती है उसका जवाब देते हैं और उन्हें डिफेंड करते हैं।
तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एनलाइटनमेंट के मूल सिद्धांत, ये तर्क, विज्ञान, मानवतावाद क्या है पिंकर के हिसाब से।
देखिए, तर्क रीजन का मतलब है अपनी समझ को आस्था, परंपरा या सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों और लॉजिक पर बेस करना।
ठीक है, लॉजिक और एविडेंस।
हाँ, विज्ञान साइंस वो मेथड है जिससे हम दुनिया के बारे में भरोसेमंद जानकारी हासिल करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है कि विज्ञान लगातार खुद को सुधारता रहता है, सेल्फ करेक्टिंग है।
और मानवतावाद,
मानवतावाद ह्यूमैनिज्म का विचार ये है कि इंसानी जिंदगी और उसकी खुशहाली सबसे ऊपर है, मतलब किसी भगवान, किसी देश या किसी नस्ल से भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट। लक्ष्य होना चाहिए सभी इंसानों का, बल्कि सभी संवेदनशील प्राणियों का, दुख कम करना और उनकी भलाई बढ़ाना।
और इन सबसे जुड़ा है प्रगति का विचार। एग्जैक्टली, प्रगति का आइडिया कि इन साधनों, मतलब तर्क और विज्ञान का इस्तेमाल करके हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, ये पॉसिबल है।
पिंकर का एक तर्क एंट्रोपी से भी जुड़ा है ना, कुछ ऐसा कि दुनिया नेचुरली बिखराव की तरफ जाती है।
हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो कहते हैं कि फिजिक्स का जो सेकंड लॉ है, थर्मोडायनामिक्स का, वो बताता है कि यूनिवर्स में चीजें स्वाभाविक रूप से व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर, मतलब एंट्रोपी की ओर बढ़ती हैं।
सब कुछ बिखरता है।
हाँ, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है, बिखरता है, लेकिन जीवन और खासकर इंसानी बुद्धि और कोशिशें जैसे विज्ञान और तकनीक, ये इस बहाव के खिलाफ काम करती हैं। ये ऑर्डर क्रिएट करती हैं, चीजों को बेहतर बनाती हैं। तो प्रोग्रेस जो है वो इसी लगातार कोशिश का नतीजा है।
और वो उन विचारों की आलोचना भी करते हैं जो इस प्रगति के रास्ते में आते हैं, जिन्हें वो काउंटर एनलाइटनमेंट कहते हैं।
बिल्कुल, वो उन्हें प्रतिप्रबुद्धता कहते हैं, जैसे धार्मिक कट्टरपंथ जो आस्था को तर्क से ऊपर रखता है, या कुछ तरह का राष्ट्रवाद जो अपने ग्रुप को दूसरों से बेहतर मानता है, या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ रूप जो मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव सच होता ही नहीं, सब सिर्फ कहानियां हैं। पिंकर के हिसाब से ये विचार प्रगति के दुश्मन है।
ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, आंकड़े, डेटा। पिंकर किन एरियाज में प्रोग्रेस के सबूत देते हैं, जरा कुछ उदाहरण दें।
हाँ, यहाँ तो आंकड़ों की जैसे बाढ़ सी है। चलिए कुछ मुख्य बातें देखते हैं। सबसे पहले जीवन और स्वास्थ्य। आप सोचिए, सिर्फ 200-250 साल पहले दुनिया में औसत उम्र कितनी थी, अंदाजा लगाइए।
शायद 40-45।
नहीं, सिर्फ 30 साल के आसपास।
क्या, बस 30?
हाँ, आज ये दुनिया भर में औसतन 71 साल से ज्यादा है। भारत में देखें तो आजादी के टाइम पे औसत उम्र क्या थी, 32 साल, आज 70 के करीब है।
ये तो अविश्वसनीय उछाल है वाकई।
बाल मृत्यु दर, माओं की मृत्यु दर, सब में भारी गिरावट आई है।
हाँ।
चेचक जैसी बीमारी जो लाखों जाने लेती थी।
हाँ, स्मॉल पॉक्स,
वो दुनिया से मिटा दी गई है। पोलियो लगभग खत्म होने वाला है। हाँ, नई बीमारियां आती हैं, जैसे अभी कोविड आया था, लेकिन विज्ञान उनसे लड़ने के तरीके भी ढूंढ रहा है। यहाँ वो हैंस रोसलिंग जैसे लोगों के काम की बहुत तारीफ करते हैं।
हाँ, वो गैप माइंडर वाले जिन्होंने डेटा विजुअलाइजेशन से दुनिया को ये सच्चाई दिखाई। अच्छा, और आर्थिक स्थिति, गरीबी का क्या? अक्सर लगता है अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब।
यही पिंकर आंकड़ों से एक अलग बल्कि ज्यादा न्यूअंस्ड तस्वीर दिखाते हैं। समृद्धि और पोषण के मामले में वो बताते हैं कि इतिहास में ज्यादातर इंसान भयानक गरीबी में जीते थे। पिछले 200 सालों में, खासकर पिछले कुछ दशकों में, एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी में नाटकीय कमी आई है।
नाटकीय कमी?
हाँ, करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, खासकर एशिया में, चीन, भारत। इसे अर्थशास्त्री ग्रेट एस्केप कहते हैं।
लेकिन असमानता, इनइक्वालिटी का क्या? वो तो बढ़ी है ना कई जगह।
हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। पिंकर मानते हैं कि कुछ अमीर देशों के अंदर, विद इन कंट्री, अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ी है।
हाँ।
लेकिन अगर हम पूरी दुनिया को एक साथ देखें, ग्लोबल लेवल पर, तो वैश्विक असमानता कम हुई है।
वो कैसे?
क्योंकि चीन, भारत जैसे पहले के गरीब देश अब तेजी से तरक्की कर रहे हैं और अमीर देशों के, मतलब, करीब आ रहे हैं। पिंकर का तर्क यह कि किसी की एब्सोल्यूट वेलबींग, मतलब उसकी अपनी भलाई, ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि वो अपने पड़ोसी से कितना कम या ज्यादा कमाता है।
मतलब अगर कोई भूखा नहीं सो रहा तो ये ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि कोई और कितना ज्यादा अमीर है।
एग्जैक्टली। अच्छा, फिर आता है पर्यावरण का मुद्दा। ये बहुत बड़ा है आजकल, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है। क्या पिंकर इसे अनदेखा करते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पर्यावरण की चुनौतियों, खासकर जलवायु परिवर्तन को बहुत गंभीर मानते हैं, लेकिन वो निराशावादी नहीं है। उनका अप्रोच, वो दिखाते हैं कि जैसे जैसे देश अमीर होते हैं, वो पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं।
अच्छा, ये तो उल्टा लगता है।
हाँ, इसे पर्यावरणीय कुज़नेट वक्र का कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब शुरू में विकास के साथ प्रदूषण बढ़ता है, पर एक लेवल के बाद जब देश अमीर हो जाते हैं तो वो उसे कम करने लगते हैं। पिंकर का मानना है कि समाधान प्रोग्रेस को रोकना नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके इसे हल करना है। जैसे क्लीन एनर्जी।
कोई उदाहरण?
वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उदाहरण देते हैं, जिसने मिलकर ओजोन लेयर के छेद को भरने में कामयाबी हासिल की।
दिखाता कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हल निकल सकता है।
ठीक है, और शांति, सुरक्षा, अधिकार, इनके बारे में क्या कहते हैं? यहाँ भी लंबे समय का ट्रेंड, वो कहते हैं, पॉजिटिव है। शांति और सुरक्षा के मामले में बड़े देशों के बीच युद्ध अब बहुत रेयर हो गए हैं।
हाँ, वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें अब नहीं
होती।
हाँ,
वो होती। होमिसाइड रेट्स, मतलब हत्या की दरें, ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में कम हुई हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मौतें, काम की जगह पर होने वाली मौतें, इनमें भी कमी आई है बेहतर तकनीक और नियमों की वजह से।
यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं से।
हाँ, उनसे होने वाली मौतें भी कम हुई हैं क्योंकि हमारी वार्निंग सिस्टम्स बेहतर हुई हैं, बचाव के तरीके बेहतर हुए हैं।
लेकिन आतंकवाद, वो तो आजकल बहुत बड़ा डर लगता है।
हाँ, पिंकर आतंकवाद को आंकड़ों के नजरिए से देखने को कहते हैं। मीडिया कवरेज की वजह से इसका डर बहुत ज्यादा फैला है, पर असल में
आंकड़े क्या कहते हैं?
आंकड़े ये दिखाते हैं कि किसी भी वेस्टर्न देश में इससे मरने वालों की संख्या सामान्य हत्याओं या एक्सीडेंट से होने वाली मौतों से कहीं कहीं कम है। ये मनोवैज्ञानिक असर ज्यादा डालता है। दूसरी तरफ लोकतंत्र दुनिया भर में फैला है। आजादी के बाद कितने कम देशों में था, आज कितने ज्यादा में है। और समान अधिकारों की बात करें तो नस्लीय अल्पसंख्यकों, महिलाओं, LGBTQ+ समुदाय के लोगों के लिए कानूनी और सामाजिक बराबरी में जबरदस्त प्रगति हुई है। हालांकि लड़ाई अभी जारी है, ये वो मानते हैं।
और ज्ञान, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता।
ज्ञान और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार दिखता है। लिटरेसी रेट्स, मतलब साक्षरता दर, आसमान छू रही हैं दुनिया भर में। ज्यादा लोग स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं।
काम के घंटे भी कम हुए हैं शायद।
हाँ, काम के घंटे कम हुए हैं, लोगों के पास आराम और मनोरंजन के लिए ज्यादा समय है। तकनीक ने रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्वे दिखाते हैं कि औसतन जो देश ज्यादा अमीर, स्वस्थ, सुरक्षित और स्वतंत्र है, वहां के लोग ज्यादा खुश भी हैं।
ये सारे आंकड़े वाकई एक बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं, उस कहानी से जो हम रोज सुनते हैं। अच्छा, अब आते हैं किताब की तीसरे हिस्से पर। पिंकर इन प्रबुद्धता के विचारों का बचाव कैसे करते हैं, क्योंकि इन पर सवाल तो उठते रहते हैं।
हाँ, यहाँ वो इन विचारों की आज के जमाने में रेलेवेंस और जरूरत पर जोर देती हैं। तर्क के बारे में वो मानती हैं कि हाँ, इंसान का तर्क परफेक्ट नहीं होता, हम सब कॉग्निटिव बायसेस के शिकार होते हैं।
हाँ, वो तो हमने शुरू में ही बात की।
लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम तर्क करना ही छोड़ दें। हल ये है कि हम अपनी सोचने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएं। कैसे? विज्ञान, खुली बहस, अच्छी पत्रकारिता, फैक्ट चेकिंग जैसे इंस्टीट्यूशंस के जरिए। इसीलिए वो फ्री स्पीच को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत जरूरी मानती हैं।
और विज्ञान का बचाव?
विज्ञान को वो दुनिया को समझने का सबसे भरोसेमंद तरीका मानती हैं। ये कोई डॉगमा नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो लगातार नए सबूतों के आधार पर खुद को सुधारता है। ये अपनी गलतियां मानता है और आगे बढ़ता है।
और आखिर में मानवतावाद, इसका बचाव कैसे करते हैं?
मानवतावाद को वो एक नैतिक दिशा देने वाला सिद्धांत मानती हैं। ये कहता है कि हमारे सारे प्रयासों, तर्क, विज्ञान, राजनीति का अल्टीमेट लक्ष्य क्या होना चाहिए?
क्या?
सभी इंसानों और अन्य संवेदनशील जीवों के दुख को कम करना और उनकी खुशहाली को, उनके फलने फूलने को बढ़ाना। ये नैतिकता का एक सेक्युलर, मतलब धर्म निरपेक्ष और यूनिवर्सल आधार देता है, जो किसी खास धर्म या समूह पर आधारित नहीं है।
तो इस पूरी गहरी चर्चा से हम कौन से मुख्य संदेश की टेकअवेज घर ले जा सकते हैं?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा संदेश है मानवीय प्रगति एक हकीकत है, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये आंकड़ों में दिखती है। हमें अखबारों की वो सेंसेशनल सुर्खियां रोज दिखती हैं जो अक्सर नेगेटिव होती हैं, पर लंबे समय का ट्रेंड देखना जरूरी है।
हाँ, जैसे भारत में ही सोचिए, रोज कितनी समस्याएं दिखती हैं, पर अगर हम 50 साल पहले से तुलना करें, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, जबरदस्त सुधार हुआ है।
बिल्कुल।
दूसरा संदेश यह निकलता है कि ये प्रगति कोई जादू से नहीं हुई, ये उन्हीं एनलाइटनमेंट आइडियाज, तर्क, विज्ञान, मानवतावाद को अपनाने का नतीजा है। ये विचार हमारी आधुनिक दुनिया के इंजन की तरह हैं, इन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए।
तीसरा संदेश थोड़ा हमारे अंदर झांकने वाला है। हमारा दिमाग हमें निराशावादी बनाता है, वो नेगेटिविटी बायस जिसकी हमने बात की।
हाँ, बुरी खबरें हमें ज्यादा खींचती हैं,
ज्यादा याद रहती हैं।
सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी शायद इसी का फायदा उठाता है। डेटा हमें इस दिमागी झुकाव से लड़ने में मदद करता है।
चौथा संदेश उम्मीद जगाता है, पर एक जिम्मेदार उम्मीद। समस्याएं आज भी गंभीर हैं, क्लाइमेट चेंज है, इनइक्वालिटी है, नई बीमारियां हैं, लेकिन पिंकर का तर्क है कि ये समस्याएं हल की जा सकती हैं। प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल।
इतिहास यही दिखाता है?
हाँ, इतिहास दिखाता है कि हमने पहले भी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और उन पर काबू पाया है, तो ये हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है।
और पांचवा संदेश जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो है मानवतावाद का नैतिक बल। यह हमें एक साझा लक्ष्य देता है, दुख कम करना, खुशहाली बढ़ाना, सबके लिए। ये किसी भी धर्म या विचारधारा से ऊपर उठकर एक यूनिवर्सल नैतिकता का आधार बन सकता है।
पिंकर अपने बातों को बड़े यादगार तरीके से भी कहते हैं। कुछ ऐसे कोट्स या विचार हैं जो इस किताब की आत्मा को पकड़ते हो?
हाँ बिल्कुल। एक जो मुझे बहुत सटीक लगा उसका सार कुछ यूं है, खबरें हमेशा उन चीजों के बारे में होती हैं जो अचानक घटती हैं, उनके बारे में नहीं जो धीरे धीरे बेहतर होती है या जो बुरी घटनाएं नहीं होती।
अच्छा,
आप कभी किसी रिपोर्टर को यह कहते नहीं सुनेंगे कि मैं आज एक ऐसे शहर से रिपोर्ट कर रहा हूं जहां कोई दंगा नहीं हुआ, या एक ऐसे देश से जहां आज कोई अकाल नहीं पड़ा। इसीलिए जैसे जैसे दुनिया बेहतर होती है वो खबर नहीं बनती।
वाह, ये तो पूरी मीडिया साइकिल और हमारे परसेप्शन को एक लाइन में समझा देता है कि हमें क्यों लगता है सब खराब हो रहा है। और एक एक और विचार,
वो जो एक्शन पे जोर देता है
जी,
प्रगति कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है जो अपने आप होती रहे, ये इंसानों द्वारा समस्याओं को सुलझाने के लिए तर्क और विज्ञान का इस्तेमाल करने का नतीजा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जारी रहेगी। हमें प्रबुद्धता के आदर्शों को समझना होगा, उन्हें सहेजना होगा और उनकी रक्षा करनी होगी। मतलब हमें एक्टिवली काम करना पड़ेगा।
ये बहुत जरूरी याद दहानी है, पैसिव नहीं रहना है। और वो छोटा सा वाक्य भी बहुत शक्तिशाली है, समस्याएं तो आएंगी ही लेकिन समस्याएं हल की जा सकती हैं। प्रॉब्लम्स आर इनेविटेबल बट प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल।
हाँ, ये तर्कसंगत आशावाद का निचोड़ है। बिल्कुल।
और मानवतावाद पर वो जो कहती हैं, जिसका सार है मानवतावाद का अंतिम नैतिक लक्ष्य दुख को कम करना और सभी संवेदनशील प्राणियों के जीवन को फलने फूलने का मौका देना है, ये बताता है कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि जीवन को वाकई बेहतर बनाना है सबके लिए।
तो इन सब गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल टिप्स?
पहला तो शायद यही कि खबरों की सुर्खियों से पैदा होने वाली चिंता, वो हेडलाइन एंग्जाइटी, उसको थोड़ा कम करें। जब भी कोई बहुत डरावनी खबर देखें तो रुककर सोचें, क्या ये पूरी कहानी है, क्या ये लंबे समय के ट्रेंड को दिखाती है?
हाँ, और शायद कुछ विश्वसनीय सोर्सेज देखें, जैसे आवर वर्ल्ड इन डेटा जैसी वेबसाइट्स हैं।
बिल्कुल, जो डेटा देती हैं। दूसरा, अपने फैसलों में सबूतों के आधार पर सोचने की कोशिश करें, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, पैसे का निवेश हो, या किसी सोशल इशू पर अपनी राय बनानी हो। भावनाओं या सुनी सुनाई बातों के बजाय फैक्ट्स और डेटा को ढूंढें।
और समाज के लेवल पे
उन चीजों और इंस्टीट्यूशंस का समर्थन करें जो प्रगति को आगे बढ़ाते हैं, जैसे अच्छी एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ओपन डिबेट, ये सब एनलाइटनमेंट के ही मूल्य हैं।
और अपने बायसेस को पहचानना।
हाँ, बहुत जरूरी, अपने और दूसरों के दिमागी पूर्वाग्रहों को पहचानें। जब आप देखें कि कोई सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा है या सिर्फ पॉजिटिव, तो पूछें कि क्या तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, क्या हम पूरा कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं।
और वो पॉसिबिलिस्ट बनने की बात।
हाँ, ये नजरिया अपनाना कि चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना लगें, उन्हें हल करने की संभावना हमेशा मौजूद रहती है, ये हमें निराशा में डूबने से बचाता है और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है, एक्टिव बनाता है।
इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे चौंकाने वाली या प्रभावशाली बात क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए शायद ये जानना कि आंकड़ों के हिसाब से दुनिया पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हुई है, खासकर बड़े युद्धों और हिंसा के मामले में। ये उस आम धारणा से बिल्कुल उल्टा है जो हमें मीडिया से मिलती है, और जीवन प्रत्याशा में जो बढ़ोतरी हुई है उसका स्केल वो भी हैरान करने वाला है।
मेरे लिए सबसे प्रभावशाली विचार तर्कसंगत आशावाद का ही है। ये मानना कि दुनिया बेहतर हुई है और हो सकती है, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। हमें इसके लिए काम करना होगा, और वो काम तर्क, विज्ञान और मानवतावाद के आधार पर होना चाहिए। ये न तो आग बंद करके सब अच्छा मानने जैसा है और न ही निराशा में डूब जाने जैसा। ये एक बैलेंस्ड और जिम्मेदार रास्ता दिखाता है।
बिल्कुल। और शायद एक आखिरी सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को।
हाँ,
अगर पिंकर सही है कि प्रगति हुई है और ये प्रबुद्धता के आदर्शों का नतीजा है, तो आज इन आदर्शों, तर्क, विज्ञान, मानवतावाद के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, और हम, आप और मैं व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर इन मूल्यों को कैसे बचा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।